الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تعالى آج ہم 14ویں پارے میں سورة النحل دیکھتے ہیں، تفسیر آیت نمبر 41 سے 64 تک. جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ سورت جو ہے یہ تمام کی تمام توحید کے گرد گھومتی ہے، شرک کا رد ہے اس سورت کے اندر. اور آپ دیکھیں گے کہ اس وقت سے ہم جتنا پڑھ چکے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی اپنی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کے انسان کو توحید کا سبق دیا اور شرک کی بتایا کہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور شرک کے اوپر مختلف باتیں کر کے اس کا رد کیا گیا. آج بھی ہم سبق میں یہی دیکھیں گے اور مشرکین کے عقائد کا رد دیکھیں گے، جو عقیدے وہ رکھتے تھے جو یا وہ جو اعتراضات کرتے تھے ان کے جوابات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 41 سے. والذین، اور وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ، اللہ کے راستے میں، من بعدی، اس کے بعد کے، ما ظلموا، وہ ظلم کیے گئے. وہ لوگ جن کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا. اب ہجرتیں تو آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہجرت کرتے ہیں، ایون پرندے بھی ہجرت کرتے ہیں، جانور ہجرت کرتے ہیں. انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے جاتا ہے، کبھی رزق کے لیے، کبھی علم کے لیے، کوئی اور اپنے کوئی فائدے ہوتے ہیں. بعض دفعہ شادیوں کے لیے لوگوں کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، کہیں جانا پڑتا ہے، موو ہو جانا پرماننٹلی، وہ ہجرت ہے. اچھا، اب اپنے علاقے کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گا، لیکن ان ہجرتوں کا کوئی یعنی ایسا ثواب نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہجرت کی جاتی ہے وہ ایسی ہجرت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. ایسے لوگ جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ریوارڈ کرتا ہے کہ ان کی دنیا کو اچھا کر دیتا ہے، ان کو دنیا میں ٹھکانہ دیتا ہے اچھا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اب اگر آپ وہاں کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جب لوگ اسلام قبول کر چکے تو ان کے اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، اپنے قریبی، اپنے دوست احباب بیگانے ہو گئے، محبتیں دشمنیوں میں بدل گئیں. وہی لوگ جو جان سے پیارے سمجھتے تھے وہی اب مخالفت کرنے لگے، زمین تنگ ہو گئی تھی ان کے لیے. اور وہ کس لیے ایسا کر رہے تھے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے کہ اس راستے پہ نہیں چلنا، اس کی وجہ سے ظلم کرنے لگے تھے. اب یہ ظلم چاہے کوئی مسلمان کر رہا ہو، چاہے کوئی کافر کر رہا ہو، مگر ظلم کرنا اس وجہ سے کہ کوئی اللہ کے دین پر نہ چلے، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ دے، اس کے اوپر پھر ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی تو انہوں نے زمین چھوڑ دی، دین نہیں چھوڑا. اور یہی چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے. آج تو ہجرتیں نہیں ہیں الحمدللہ، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو دین کی وجہ سے اس طرح سے کیا جائے. ہاں، بعض ملک ایسا ہیں جہاں پہ، جیسے چائنا میں لوگوں کو کنسنٹریشن کیمپس میں کیوں بند کیا؟ کوئی اور وجہ نہیں، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان اور وہ اپنا دین چھوڑ دیں، اس کے لیے ان کی برین واشنگ کی جا رہی. उनको इस दीन से हटाने के लिए, और उनको क्या क्या सिखाया जा रहा है, कौन सी एजुकेशन दी जा रही है, और उनकी अपनी तरफ से वो क्लींसिंग कर रहे हैं। क्या क्लींस कर रहे हैं? दीन। ऐसे वक्त में फिर ऐसे लोगों के लिए हिजरत करना जरूरी हो जाता है। तो मुशरिकीन ने मक्का ने मुसलमानों का भी यही हाल कर दिया था। इसकी वजह से पहले दो हिजरतें की मुसलमानों ने हबशा की तरफ, और अभी हिजरत नहीं हुई लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से यहाँ पे एक मदीना की तरफ हिजरत करने की तरफ भी इशारा मिल जाता है कि हिजरत मुसलमानों को करनी पड़ेगी। जब उनके ऊपर जुल्म इतना हो जाए तो ऐसा नहीं कि दीन छोड़ दो। अगर आप किसी जगह ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे आपके लिए दीन पे चलना मुश्किल हो जाए, ऐसी प्रोसिक्यूशन तो आज नहीं है लेकिन फिर भी बाज जगह ऐसी होती हैं जहां पे इंसान समझता है कि यहाँ पे मेरा दीन महफूज नहीं है, तो उसको चाहिए कि वहां से हिजरत कर ले, फिर वहां ना रहे। और इंसान को सबसे ज्यादा पहला डर क्या होता है? क्या करेंगे, फिर खाएंगे कहाँ से, फिर पिएंगे कहाँ से, जॉब का क्या बनेगा, मेरे तिजारत का क्या बनेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला दुनिया में भी अच्छा ठिकाना देगा, और आखरत का तो अगर अजर पता चल जाए ना तो इंसान खुश हो जाए। इतना बड़ा अजर है। क्यों? इसलिए कि ये आसान नहीं है। घर बार छोड़ना, अपने रिश्तेदार छोड़ना, अपने दोस्त अहबाब छोड़ना, अपना वतन छोड़ना, सबसे बड़ी बात है अपनी प्लेस ऑफ कंफर्ट को छोड़ देना, अपनी जॉब्स, अपने माल, अपनी बिजनेस सब छोड़ छाड़ के एक इंसान कहे कि मैं अल्लाह की खातिर दूसरी जगह मूव हो जाता हूँ, बहुत बड़ी बात है। कहना आसान है, ये करना आसान नहीं था। आप सोचें कि उस वक्त मुसलमानों को, यानी अच्छे भले रह रहे हैं एक जगह पे उस वक्त, तो या आज तो दूसरे लोगों में, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं लोग बहुत तरक्कियों के लिए और अपने करियर बनाने के लिए और वजूहत की बिना पे, लेकिन उस वक्त लोग इस तरह छोड़ के नहीं जाया करते थे। जहां पे पैदा होते थे वहीं पे मरते थे, हिजरतें नहीं होती थी ऐसी, और लोग अपने कबीले के अंदर रहने में सेफ्टी महसूस करते थे, उनका ट्राइबल सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। तो ऐसे हालात के अंदर एक अल्लाह की खातिर चले जाना कहीं आसान है? कोई माली कुर्बानी तो देना, जज्बात की कुर्बानी कितनी बड़ी। इमोशंस इंसान के अटैच्ड होते हैं किसी जगह से, आसान नहीं होता। तो आज अगर ऐसे हालात हो, मिसाल के तौर पे फितना दिज्जाल में इंसान को निकलना पड़ेगा और कहीं जाके गारों में पनाह लेनी पड़ेगी, कहीं दूर दराज इलाकों में जाना पड़ेगा अपने दीन को बचाने के लिए, खुद सोचिए क्या हम इस पोजीशन में हैं कि हम उठ के और अपना सारा घर बार छोड़ के और चल पड़े। इंसान को कितने खौफ, कितने खदशात आते हैं, तो उनका भी सोचे। जब मुसलमानों ने उस वक्त हिजरत की थी तो वो आसान नहीं था। ये आयतें पढ़ लेनी आसान होती है, जो यकीन है ना वो कर लेना कि अल्लाह देगा हसना, अल्लाह का वादा है, अल्लाह बेहतरी देगा, और अल्लाह ने दी। आप देखिए वो ही मुसलमान जो खाली हाथ पहुंचे थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, यानी हजरत सुहेब जो थे वो जिस वक्त हिजरत करने लगे तो काफरों ने रोक लिया, उन्होंने कहा तुमने जो कुछ कमाया यहाँ पे मक्का में कमाया, लिहाजा तुम अपना सारा माल यहाँ छोड़ के जाओगे, ऐसे नहीं तुम जा सकते। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, उन्होंने अपने सारे माल का पता बता दिया, फलां फलां जगह पे मेरा ये माल पड़ा। तो खाली हाथ वहां से निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। क्या थी उनको लालच के नबी अलैहि सल्लतु वसल्लम के पास जाना, वरना मक्का के अंदर अगर मुसलमान ना होते तो उनको कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम ही ये था कि ये कलमा छोड़ दो। तो आप देख लें बहुत सारी मिसालें हैं गुलामों की, खास तौर पे उनके ऊपर तो कितना ज्यादा जुल्म हो रहा था कि ये दीन छोड़ दें, उन्होंने नहीं छोड़ा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तो ठीक है दीन नहीं छोड़ना, जमीन छोड़ दें। तो अल्लाह ताला ने उनको बरकतें दी, फिर जो खाली हाथ आए थे वही हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ को देख लें, फरमाते हैं मट्टी को हाथ लगाता था सोना बन जाती थी, इतना अल्लाह ने दिया उनको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अब्दुल रहमान तुम मुझे जन्नत में, मैंने तुम्हें देखा है तुम रींगते हुए पहुंचे हो। तो परेशान हो गए कि या रसूलल्लाह क्या वजह है, फरमाया तुम्हारा माल, तुम्हारे माल का हिसाब, अभी उनका माल हलाल का था। तो इतने फयाज थे, पूरा काफला एक दफा आया उनका जिसमें कई सौ ऊंट थे और सामान से भरे हुए थे, सारा का सारा अल्लाह के रास्ते में दे दिया। और इनका जो आम मामूल था ना, यानी जो चलते फिरते जो नेकी इंसान कर लेता ना, चलते फिरते जैसे अब हम चलते फिरते जाए कि मस्जिद में जाके कुछ डोनेशन बॉक्स में डाल दिए, चलते फिरते इंसान कुछ सर, वो चलते फिरते 30-30 गुलाम आजाद कर देते थे, ऐसा उनका सदका होता था। एक दफा एक जमीन बेची है 40,000 दीनार में, सब अल्लाह के रास्ते में दे दी। तो फिर भी डरते रहते थे कि ये माल मुझे हलाक ना कर दे। और इसी तरह आप हजरत उस्मान को देख लेना, देख लें उनके पास अल्लाह ताला ने कितनी कशाइश दी थी। और सहाबा कराम का भी ये हाल था कि आप सोचें 20 साल का अरसा सिर्फ गुजरा है, 8 साल में तो मक्का ही फतह हो गया था, तो वैसे ही काया पलट गई थी, लेकिन 20 साल के अरसे के अंदर ये हाल हो गया था कि जकात लेने वाला ही नहीं था कोई, देने वाले थे सिर्फ। सुभान अल्लाह, ये वही लोग थे जिन्होंने हिजरत की थी और लुटे पुटे आए थे, ना अंसार के माल में कोई कमी हुई और ना मुहाजरीन को अल्लाह ताला ने महरूम रखा। फिर जब ये खैबर वगैरह फतह हुआ था, ये तो मक्का फतह होने से भी पहले, तो तब भी मुसलमानों के हाल बदल गए थे। यानी कुछ चंद एक सालों की बात थी, अल्लाह ताला ने दुनिया में भी दिया ना, लेकिन इंसान इतना खौफ खाता है, कहता है कहाँ से खाऊंगा, मेरी रोजी का क्या बनेगा, सबसे बड़ी फिक्र ये होती। लेकिन अल्लाह ताला के वादों पर अगर इंसान यकीन रखे ना, तो अल्लाह देता है और वो कमी नहीं करता। और आखरत का अजर तो अगर पता चल जाए कि आखरत में कितना बड़ा अजर है, तो इंसान हैरान हो जाए, खुश हो जाए वो। लेकिन फरमाया लव कानू यालमून, काश के वो जानते होते, इनको इल्म होता, काश इनको पता चल जाए। इल्म ना, हम इंफॉर्मेशन को असल में इल्म समझते हैं, इंफॉर्मेशन अलग चीज है और इल्म अलग चीज है। किस चीज का पता होना, कि पता है हमें, जैसे लोग कह देते ना आप हमें क्या सिखाएंगे, पता है हमें सब कुछ पता है, वो इंफॉर्मेशन है, इल्म नहीं है। इल्म वो है जो दिल में जम जाता है, अमल की सूरत में सामने आता है, वो असल हकीकी इल्म वो है। और आप देखें ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, ये जो आप न्यूज़ सुनते हैं, ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन, इल्म नहीं है ये। और इंफॉर्मेशन से कभी भी जिंदगियां नहीं बदलती, इल्म से बदलती हैं, कुरान का इल्म लेने से। हाँ ये जो आप हर तरफ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कहीं व्हाट्सएप पे आ रही है, कहीं टीवी पे आ रही है, ये सब इंफॉर्मेशन, इल्म नहीं है। तो जब इल्म आ जाता है ना, तो फिर इंसान को इन वादों पे यकीन आ जाता है कि मेरे अल्लाह का वादा है कि वो दुनिया में भी अच्छी देगा ठिकाना, और आखरत का तो बहुत ही अच्छा है। फिर इंसान को कोई फिक्र नहीं रहती, परेशान नहीं होता, फिर वो ये कदम उठा लेता है। और इसके अलावा हदीस में आता है कि क्योंकि अब वो वाली हिजरत तो खत्म हो गई है ना, तो हदीस में आता है कि मुहाजिर वो है जो हर उस चीज को छोड़ दे जिससे अल्लाह ने मना किया। यानी ये भी एक हिजरत है, ये छोटी छोटी हिजरतें, आजकल वो वाली हिजरत नहीं है, तो ये हिजरत तो कर सकते हैं ना, जिसमें क्या है, जिस चीज से अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया ना, उसको छोड़ देना, ये भी तो मूव करना है ना, कि आप मूव कर गए उससे। और जब आप मूव कर गए उससे, तो फिर क्या होगा, अल्लाह ताला इस दुनिया में भी रिवॉर्ड करेगा। अल्लाह ताला किसी का भी रखता नहीं है। इंसान सोचता है कि पता नहीं मैं ये चीज छोड़ दूंगा ये काम छोड़ दूंगा, कैसा मेरे गुजारा चलेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे दोस्त नहीं बनेंगे, बातें बनेंगी मेरे बारे में, मैं कैसे छोड़ूं। तो अल्लाह ताला ने इतने प्यारे वादे किए हैं कि इंसान अगर इन वादों पर यकीन करे ना, कोई गुनाह छोड़ना मुश्किल नहीं रहता। जो इंसान याद रखेगा कि बाप अल्लाह के खौफ से किसी चीज को छोड़ देता है, अल्लाह ताला उससे बेहतर चीज उसको इस दुनिया में अता करता है। मसलन हराम है, हराम की कमाई है, आपने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि ये जॉब हराम थी, आपने कहा कि हाय अब मेरा क्या बनेगा, मैं क्या करूंगी, अब हम किधर से खाएंगे। याद रखिएगा अल्लाह ताला उससे बेहतर पाक रोजी आपको अता करेगा। इसी तरह आपने सोचा अगर मैं हिजाब लेना शुरू कर दूंगी तो मेरा क्या बनेगा, हाय लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे मुला नहीं कहेंगे, मेरे साथ कोई बैठेगा नहीं, मेरी दोस्ती मुझे छोड़ देंगी, अल्लाह ताला उससे बेहतर कंपनी आपको दे देगा। आप करके देखें, अल्लाह की खातिर किसी भी गुनाह के अंदर आप मुब्तला है तो अल्लाह की खातिर उस गुनाह को छोड़ के देखें, अल्लाह ताला उससे बेहतर ऑल्टरनेट ना दे तो कहिएगा। ये अल्लाह के वादे हैं, तुमने ये जमीन छोड़ी ना, अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर जगह देगा और आखरत में भी देगा। लेकिन ये वही कर सकता है, अल्लादीना सबर वाला रबी में तवक्कलून, ये वो लोग हैं जो सबर करते हैं और अपने रब पे इनको भरोसा होता है। और सबर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना कि सबर वो है कि इंसान अपने आप को नेगेटिव सेंटिमेंट से रोके, इंसान अपने आप को उन रिएक्शन से रोके जो नेचुरली आते हैं लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की खातिर रोक दे। मसलन गम के अंदर चीखना चिल्लाना और सर दीवारों में मारना, ये नेगेटिव रिएक्शंस है, सिर्फ इनसे किस लिए रुक जाए, अल्लाह की खातिर। तो अल्लाह ताला उसका देखिएगा कि ऐसे सबर वालों का अल्लाह ताला ने क्या रिवॉर्ड रखा। और देखिए हिजरत के कॉन्टेक्स्ट में देखें सबर क्या है, कि इंसान अपने आप को ये इस चीज के ऊपर नेगेटिविटी से रोक ले, कि इंसान कहे कि मैंने अब सबर करना ठीक है, दूसरी जगह जाके कुछ अरसे के लिए सबर करना पड़ता है, कहीं जाएंगे तो फौरन लोग फूलों के हार तो नहीं लेके खड़े होंगे और फौरन आपके लिए कोई वेलकम करने के लिए तो नहीं खड़ा होगा, कुछ दिन सबर के भी आएंगे। सबर जिसके अंदर होगा वही हिजरत कर सकेगा, और दूसरा कौन, जो तवक्कल करता है। तवक्कल यानी अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा है उसको कि मेरा रब देगा मुझे, जो भरोसा करता है उसी को मिलता है ना, मेरा रब मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मेरे साथ है। तो हदीस में आता है कयामत के दिन एक मुनादी निदा करेगा, कहाँ है सबर करने वाले, सबर करने वाले खड़े हो जाएंगे, उनको कहा जाएगा आज बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाओ। सबर है इंसान जल्दी ना करे, हरी ना करे, क्यों नहीं मिल रहा मुझे, क्यों नहीं ये नहीं, क्यों नहीं मेरी दुआ कबूल हो रही, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मुझे ये सारी चीजें बेसब्री की है। तो बेसब्री नहीं करनी, अल्लाह ताला सबर करने वालों को ये दुनिया के हसना और आखरत का अजर देगा, और जो अपने रब पे भरोसा करते हैं। ये जो अगली आयत है ना, ये आयत से लेकर 50 आयत तक एक ही टॉपिक है जिसको हम देखेंगे एक साथ ही, और इसमें क्या है रसूल की रिसालत के बारे में जो वो लोग एतराजात करते थे और जो इस तरह से मुखालफत करते थे, तो एक उनका बहुत बड़ा एतराज ये था कि अगर ये रसूल है तो फिर ये क्यों नहीं एक फरिश्ते, ये इंसान क्यों है, बशर क्यों है, बशर तो रसूल हो ही नहीं सकता। तो इसका जवाब पहले भी कई दफा आया हुआ है कि अगर दुनिया के अंदर फरिश्ते बसते होते तो अल्लाह ताला फरिश्तों को ही रसूल बना के भेज देता, लेकिन यहाँ पे इंसान बसते हैं, इंसानों के लिए फरिश्ता कैसे आ सकता था। और दूसरा ये फरिश्ता आके कुछ बताता इंसानी सूरत में तो फिर भी नहीं तुमने मानना था, और अगर फरिश्ते की सूरत में आता तो तुम उसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे, और जो वो बातें बताता तो फिर उसके बाद लोग कहते ये तो फरिश्ता इसलिए कर रहा है ना, हम तो इंसान है हम कैसे कर सकते। अल्लाह ताला ने इंसानों में से ही एक इंसान को चुना अपना पैगाम देने के लिए। आज इस चीज को एक डिफरेंट तरह से इस को बताया गया, उनके इतराज का जवाब दिया गया कि वमा अरसलना मिन कबलिक इल्ला रिजालन, नहीं भेजे हमने आपसे पहले भी मगर मर्द, नू ही इलैहिम, हम वही करते हैं उनकी तरफ। यानी आपसे पहले भी जो पैगंबर आए वो भी सब रसूल थे, इसमें इतने अचंभे की क्या बात है, इतने हैरान होने की क्या बात है, ये कहने की क्या जरूरत है कि फरिश्ता क्यों नहीं आया। तो पहले क्या फरिश्ते आते थे? पहले भी तो इंसान ही आते थे। फसअलु अहले जिक्री इनकुंतुम ला तालमून, तो पूछ लो अहले जिक्र से। अहले जिक्र का मतलब क्या है? जिक्र से मुराद क्या होता है? जिक्र का मतलब होता है, वैसे मतलब होता है रिमाइंडर, याद दिहानी, वो चीज जो इंसान को याद थी लेकिन भूल गई, उसको याद कराने के लिए जो चीज आती है वो जिक्र है। इस कहते हैं ना, हम फलां का जिक्र किया, हम तुम्हारा जिक्र कर रहे थे। तो जिक्र मतलब क्या? तुम्हें रिमेम्बर कर रहे थे, तुम्हारा यानी तुम्हें हम जानते हैं पहले से लेकिन भूल गए, वो तो उस वक्त बैठे, तो हमने तुम्हें याद किया, तुम्हारा जिक्र किया। तो जिक्र से मुराद कुरान भी है और जिक्र से मुराद पिछले जो किताबें थी वो भी है। तो यहाँ पे मुराद क्या हुआ? अहले जिक्र से मुराद अहले किताब के जो लोग जानते हैं, जो जानने वाले हैं, उनसे पूछ लो अगर तुम्हें नहीं मालूम, अगर तुम्हें इल्म नहीं है। क्यों ये कहा गया कि अहले जिक्र से पूछ लो? इसलिए क्योंकि उनके पास जो रसूल आए वो भी सारे इंसान ही थे, उनमें से कोई भी फरिश्ता नहीं था। तो उनको कहा गया कि आसमानी किताबों का के जो आलिम है उनके पास जाओ। इससे हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, हमें ये पता चलता है कि जब हमें कोई बात नहीं पता हो ना तो हम पूछ लें किसी से, हम ऐसा ना करें कि खुद ही कयास करने लगे, मैं ये समझता हूं या मैं समझती हूँ, या हम ऐसे लोगों से जाके ना पूछें जिनको खुद कुछ पता नहीं। अक्सर देखा गया कि लोग मजलिसों में बैठे होते हैं, उनके जैसे ही लोग बेइल्म, जो उन इनको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता, और उनसे पूछते हैं, सुना है आजकल ये बात है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? भाई वो क्या बताए, उसको तो खुद नहीं पता। हम क्यों ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं, ऐसे लोगों से इल्म लेने की कोशिश करते हैं, या ऐसे लोगों से पूछते हैं जिनको खुद चीजों का इल्म नहीं है? तो यहां पता चला कि पूछना किससे है, जो उस बारे में इल्म रखते हैं उनसे पूछना है। हम बाज दफा इसी तरह क्या करते हैं कि जब हमने कुरान की तरफ आना है, कुरान को पढ़ना है, सीखना है, तो उनसे पूछ रहे होते हैं जिन्होंने कभी खुद नहीं पढ़ा होता। आप बताएं कि मैं क्लासे ले लूं, मुझे तो ऐसे कॉल आई है, मुझे तो पढ़ने को कहा गया है, मुझे तो कहा गया ज्वाइन करो, आप क्या मशवरा देते हैं, आप क्या समझते हैं? वो उनके सामने से पूछ रहे हैं जो कभी पढ़ के नहीं बैठे हुए। लिहाजा फरमाया अहले जिक्र से पूछो। इसी तरह कोई मसले मसाइल भी हो, दीन की कोई बात समझनी हो, तब भी ऐसे लोगों से नहीं पूछना चाहिए जिनको इल्म नहीं होता। और यहाँ पे अहले जिक्र की तारीफ भी है, यानी वो लोग जो वही का इल्म रखते हैं, वही इलाही को जानते हैं, उनसे जाके सवाल करना चाहिए जो दीन का सवाल हो। बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुर, सात रोशन निशानियों के और सहीफों के, यानी जो पिछले पैगंबर भी आए, पिछली आयत के साथ ही ये बात जुड़ी हुई है। अच्छा हाँ, एक और बात जो यहाँ पे वाजे कर दूँ, जरूरी बात है, वो ये है कि जो पिछले सारे पैगंबर आए उनके बारे में बता दिया गया कि सारे के सारे जो थे वो रिजाल थे, उनमें से कोई भी निसा नहीं थी, समझ आई बात? और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं थे कि जो औरतें हों, सब मर्द थे। तो ये जो आज हमारे यहाँ ये शुरू हो गया ना कि औरत की इमामत और औरत खुतबे देगी मस्जिदों में, और औरतें और मर्द एक साथ खड़े होंगे जमात के अंदर साथ साथ लग के, और हमें तो आप पीछे ना करें क्योंकि हम तो किसी से कम नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये रोल मर्दों के लिए ही रखा हमेशा से, आज तक कभी कोई औरत नबिया नहीं हुई। हाँ, इल्हाम किया अल्लाह ताला ने औरतों के दिल में, जैसे उम्मे मूसा के दिल में किया या हजरत मरियम के, लेकिन वो नबी नहीं बन गई, वो अल्लाह ताला के बहुत करीब हो सकती हैं ये कह सकते हैं हम, लेकिन वो नबियों में से नहीं थी। तो इसलिए हमें यहाँ पता चलता है कि औरतें कभी भी नबिया नहीं हुई हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो औरतों और मर्दों के मुकाबले किए जाते हैं ना, कि औरतें अपने आप को प्रूव करना चाहती हैं कि हम मर्दों से कहीं कम नहीं, तो ये मुकाबले ना कुरान ने कभी किए, ना कभी ऐसी बहसें हुई सहाबा की मजलिस के अंदर, कोई कोई ऐसी चीज नहीं। ये आज हमने, ये कैसे शैतान ने शोशे छोड़े हैं कि ये आज हम मर्द और औरत की इस बहस में पड़ गए कि कौन अफजल है और कौन किससे बढ़ के, और औरतों ने ये प्रूव करना है कि हम भी मर्दों के बराबर हैं, उसके लिए वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने दोनों के रोल मुख्तलिफ रखे। आज औरतों की इसके ऊपर बहुत काफी बात आएगी आगे भी, लेकिन यहाँ पे ये समझ लें कि आज तक तारीख में कभी भी कोई औरत नबी बन के नहीं आई। और ये बातें आपको पिछले जो किताबें हैं उनके जो आलिम हैं वो भी बता सकते हैं। तो वो लोग बय्यिनात लेकर आए, जो पैगंबर थे वो बय्यिनात लाए। बय्यिनात क्या होती है? मौजबी बय्यिनात, और भी वो तमाम रोशन दलाइल जो हिदायत की तरफ लेके चले वो भी बय्यिनात। आप जैसे कि अगर कोई पैगंबर कोई मौजजा भी नहीं दिखाता तो तब भी उसकी अपनी जिंदगी जो है ना वो बय्यिना होती है, वो एक रोशन दलील होती है कि ये सच्चा है। देखिए नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, क्या उनकी जिंदगी एक बय्यिना नहीं है? उनकी जिंदगी बताती है ये सच्चे हैं, इनका मिशन सच्चा है। उनकी पाकीजगी, उनकी किरदार, उनका अखलाक, उनके तौर अतवार, ये सब बय्यिना होते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी बय्यिना थी। तो अल्लाह ताला ने पैगंबरों को ऐसे ही नहीं भेज दिया, खाली हाथ नहीं भेज दिया, उनको बिल बय्यिनात रोशन दलाइल के साथ मौजजात दे के भेजा। वह जुबर, और जुबर जबूर की जमा है, यानी स्क्रिप्चर्स, सहीफे, सहीफे या तो किसी पैगंबर के साथ उसके साथ अपने सहीफे भेजे गए, या वो पिछले पैगंबर की ही शरीयत को लेके आगे चला। तो बाज के साथ किताबें आई, बाज के साथ सहीफे आए, और बाज ने उन्हीं को आगे किया। तो पैगंबरों को अल्लाह ताला ने ये दिया, वह अनजलना इलैक दिक्रा, और हमने आपकी तरफ यानी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ जिक्र नाजिल किया। किस लिए ये जिक्र आया? ली तुबय्यिना लिन्नास, ताकि तू आपके ऊपर इसलिए नाजिल किया कि आप बयान करें लोगों को ये जिक्र, यानी वाजे कर दे, एक्सप्लेन कर दे इसको लोगों के ऊपर। याद रखिए ये आयत जो है ना, ये आयत उन लोगों के लिए हुज्जत है जो लोग कहते हैं कि हमारे लिए कुरान काफी है, हमें हदीस की जरूरत नहीं है। इस आयत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अथॉरिटी बताई गई, उनका रोल बताया गया। आपने कभी सोचा, कुरान तो अहले जुबान पे आया था, उनके अंदर ही नाजिल हुआ था, वो लोग अरबी जानते थे, वो हमारी तरह थोड़ी थे। उनके हालात को सामने रखते हुए कुरान की आयतें उतरती थी, वाकयात उनके सामने हो रहे थे। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कुरान की कुछ तख्तियां होती जो किसी पहाड़ पे पड़ी होती, वो जाके ले आते और उनको पढ़ लेते? आखिर वो अरबी तो जानते थे और आखिर उनको हालात भी पता थे, क्यों नहीं ऐसा हुआ? इससे आपको क्या बात समझ आती है? क्या अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल था? तख्तियां आ जाती हर रोज, तख्तियां उतर जाती हैं, लोग ले लेते, अरबी पढ़ लेते, पढ़ के सुना देते एक दूसरे को, पढ़ना ही था ना। फिर क्यों अल्लाह ताला ने पैगंबर को भेजा? इससे आपको पैगंबर की अहमियत और उनका रोल पता चलता है कि क्यों भेजा अल्लाह ताला ने, इसलिए कि ये कुरान अगर आसमान से ऐसे ही डायरेक्ट उतर जाता और इसको कोई एक्सप्लेन ना करने वाला होता तो किसी को समझ नहीं आनी थी, ये खुद से नहीं समझा जा सकता। ये एक इंसान को दिया गया, उस पे उतारा गया, वो पढ़ के सुनाए, लोगों को एक्सप्लेन करें, खोल के बताएं, आयात को खोल के बताएं, उनको प्रैक्टिकली करके दिखाएं, उनकी तशरीह करें अमल से भी और जुबान से भी, तब समझ आती है ये कुरान की, तब प्रैक्टिकली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कुरान जहां जरूरी है वहां पे साहिबे कुरान भी जरूरी है। क्यों ये बात लोग भूल जाते हैं कि हमें हदीस की उतनी ही जरूरत है जितनी कुरान की, क्योंकि कुरान की तफसीर हमें हदीस से मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा इसको खोल के बयान किया। अगर आप ना करते हम तो एक सलाह का लफ्ज भी नहीं समझ सकते। आपको पता है वाकईमुस सलाह कितनी दफा आया कुरान में? अब सलात के 22 माने हैं लुगत में, 22। रहमत को भी सलात कहते हैं, दुआ को भी सलात कहते हैं, आग पे तपाने को भी सलात कहते हैं। आप कौन सा माना लेते हैं? कैसे समझते क्या सलाह कैसे पढ़नी है, उसके अंदर कयाम में क्या पढ़ना है, रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, ये बातें तो नहीं है कुरान के अंदर। कौन आपको बताता कितनी रकतें हैं? कौन बताता? और बेशुमार बातें इससे रिलेटेड, वुजू के तरीके को ब्रीफली कुरान के अंदर बताया गया है, लेकिन एक्सप्लेन करना इस ये किससे टूट जाता है, इसकी एक एक छोटी छोटी बारीकी को बताना, इसको करके दिखाना, ये सब तो कुरान में नहीं है। इसके लिए कोई इंसान चाहिए था जो हमारे सामने होता, जो करके दिखाता, उसको देखने वाले फिर वैसा करते, फिर वो आगे वालों को वैसा बताते, इसकी जरूरत थी। फिर जब लोग कहते हैं हम कुरान को तो ले लेते हैं लेकिन हमें हदीस की जरूरत नहीं, तो गोया वो ये कह रहे हैं हमें नबी की जरूरत नहीं, नबी की बात ही हदीस है। तो इसलिए जहां कुरान है वहीं साहिबे कुरान है। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने नाजिल किया अद्दिकर, रिमाइंडर है। सबसे पहली तो ये बात कि ये नसीहत है, ये रिमाइंडर है। ये नहीं आपको कोई कह रहा कि आपको कुछ नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि गलत क्या है और सही क्या है। अल्लाह ताला ने अल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा फरमाया कि हमने इंसान के अंदर डाल दिया उजूर और तक्वा, उसको पता है चीजों का, ये बुरी है ये अच्छी है, ये चोरी बुरी है, ईमानदारी अच्छी चीज है, सच बोलना अच्छा है, झूठ बुरी चीज है। ठीक है, इतना तो अल्लाह ताला ने अंदर डाल दिया, मगर दीन की बारीकियां इंसान को नहीं पता जब तक वो किसी से सीखे नहीं, समझे नहीं इन चीजों को, किसी को करता हुआ नहीं देखे। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने पैगंबर को मबऊस किया। वो पैगंबर एक रहमत है, एक किताब ऐसे ही दे दी जाए नहीं लोग समझ सकते, बेशुमार चीजें इसमें नहीं समझ सकते, कुछ से कुछ करने लग पड़ेंगे। इसीलिए आज ये लोग क्यों कहते हैं कि हमने हदीस को नहीं मानना, जानते हैं इनके पीछे इनका मोटिव क्या है? पता है आपको? इसलिए कि अगर हदीस निकाल दी ना तो फिर तो मजे ही आ गए, क्योंकि कुरान की जो मर्जी इंटरप्रिटेशन करते रहो, फिर जैसे मर्जी समझो, जिसका दो जो दिल करेगा वो वैसे समझेगा। सलात का माना दुआ कर लिया, चलो जी आप उठ के दुआ कर लिया करें, बस सुबह भी दुआ कर ले, शाम को भी दुआ कर ले। अब देखिए ना, सलात का तो मतलब लुगत में दुआ भी है, तो कोई बात नहीं, आप दुआएं किया करें, हो गया काम। अब क्या, ये मैं आपको एक मिसाल दे रही हूं, ऐसी बेशुमार मिसालें, जिस वक्त आप हदीस को निकाल देंगे तो कुरान को फिर जैसे मर्जी माने ट्विस्ट किए जाए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन कर दिया इसको, और यही चीज है जो उम्मत को मुत्तहिद करने वाली है। जब लोग अपनी मनमानियां करना चाहते हैं तो हदीस को निकाल देते। इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मैं अपने पीछे दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान और एक मेरी सुन्नत। तुम इनको पकड़े रखोगे ना तो कभी गुमराह नहीं होंगे, और आज गुमराह ही इसलिए कि इनको छोड़ दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई है ये, यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की थी कि एक आदमी ऐसा होगा कि जो तकिया लगाए हुए ऐसे बैठा होगा और कहेगा हमारे लिए कुरान काफी है, हमें हदीस की जरूरत नहीं। समझ आई? तो इसलिए याद रखिए, कुरान समझ नहीं आ सकता जब तक हदीस ना हो। याद रखिए, ऐसे लोगों के कभी फितने में ना आए, और ये लोग आजकल बहुत फैल रहे हैं, और ये लोग यूथ को बहुत टारगेट करते हैं, ये कॉलेजों वगैरह में, इसमें ये लोग बहुत है जो ये कहते हैं कि बस कुरान काफी है ना, हदीस को छोड़ दो। हदीस तो पता नहीं जी बाद में लिखी गई, हदीस का क्या है पता? यार इनसे बंदा पूछे, लोगों तुम्हें इतना भी पता है कि हदीस को प्रिजर्व करने के लिए क्या किया गया? तुम जानते हो? तुम रिजाल का इल्म जानते हो? जिनसे हदीस ली गई उनका इल्म जानते हो? उनके ऊपर किताबें हैं, तुमने कितनी हदीस की किताबें पढ़ी हैं? तुम्हें ये भी पता है कि हदीस होती क्या है, कैसे हम तक पहुंची, इसका पूरा क्राइटेरिया पता है? या बस सुनी सुनाई बात किसी ने कह दिया कि हदीस तो बाद में लिखी गई जी, हदीस के ऊपर हदीस का क्या, इस तरह? या मैंने जैसे आपको पिछली बताया था, किसी ने मुंह की बातें ना जो मर्जी शैतान मुंह में डाल दे, किसी ने जी कह दिया तो उन्होंने, सहाबा ने हदीस लिखी, वो तो आदमी थे इसलिए उन्होंने आदमियों की फेवर में लिख दी, देखिए औरतों की फेवर में नहीं है हदीस। ये कहां के झूठ, बोहतान, इल्जाम सहाबा पे? यानी जिसका मतलब तो ये कि हदीस तो बाद में लिखी गई, हदीस तो इसलिए वो काबिले अमल नहीं, इसलिए हम भरोसा नहीं कर सकते। यानी तुम भी सहाबा के ऊपर इल्जाम लगा रहे कि सहाबा ने हदीस को प्रिजर्व नहीं किया सही से, उन्होंने खुद से लिख दी चीजें। उठा के देखें ये क्रिश्चियंस की सारी बुक्स जो है ना, कितनी बाद में लिखी गई, कितनी बाद में लिखी गई। ईसा अलैहि सलाम भी उठा लिए गए, उनके भी बाद उनके हवारियों ने खुद ही लिख ली, उनका तो कहा जा सकता है, हमारा ऐसा नहीं है। ये इल्म अगर आप देखें ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे हदीस हम तक पहुंची है, हैरान हो जाएंगे आप। इनसे इंसान पूछे, जरा कभी पूछ के देखिएगा ऐसे लोगों से, कि आपको कितना इल्म है इस बात का कि हदीस हम तक कैसे पहुंची? कभी आपने इसकी तहकीक की है, या उसने क्या दिया, उसने ही से की बात लेके तो चल पड़, और आप देख लें 100% ऐसा होगा कि उनको कुछ नहीं पता होगा, बस मुंह की बातें हैं। और इस तरह से आज हमारे दीन को बिगाड़ा जा रहा है। ऐसा इंसान मुसलमान नहीं रह सकता जो हदीस का इनकार करते, जो हदीस को रद्द करते, वो मुसलमान नहीं है। इसलिए कि उसने तो रिसालत को ही रद्द कर दिया ना फिर, नहीं तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है फिर? तो वो एक आम ही इंसान है, वो कोई रसूल तो नहीं है फिर, क्योंकि तो अगर आपने हदीस ही नहीं लेनी तो उनका ये रोल ही खत्म कर दिया, तो बस वो फिर एक अच्छे इंसान थे जो अपने वक्त में आए थे और गुजर गए, ये कहना चाहते हैं? उनकी रिसालत है ही ये कि वो आज तक रसूल हैं और कयामत तक वो ही आखिरी रसूल है, और उनके बाद रिसालत का सिलसिला खत्म है, अब कोई रसूल नहीं आएगा। तो उनकी रिसालत को मानना ही ये है कि उन हदीस को माना जाए, लेकिन हदीस का इनकार करके आज ईमान के लुटेरे ईमान लोगों का छीन रहे हैं। एंड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनका मुझे नहीं पता था कि ये भी हदीस के मुनकर हो सकते, अच्छे भले जो यानी अपने जानने वालों में ऐसे अच्छे भले लोग जो बाहर देखने में ऐसे ही लगता है कि ये अच्छे भले मुसलमान है। इंसान उनसे पूछे ये नमाज का तरीका तुम्हें कहाँ से आया, तुम तो नमाज ही नहीं पढ़ सकते अगर कुरान सिर्फ लेके चलो तो, अगर हदीस निकाल दो तो। लेकिन वो अपने आप को पक्के मुसलमान समझते, और लेकिन हदीस का इनकार है, मनमानियां जो करनी है। तो फरमाया वह अनजल नाई लेकर दिखरा ली तुबई ना लिन्नासी, ताकि आप बयान कर दें लोगों के लिए, मा नुज़िला इलैहिम, जो उतारा गया उनकी तरफ, इसको खोल खोल के लोगों को वाजे कर दें। इसलिए नहीं कह सकते आज कोई भी उठ के ये नहीं कह सकता मैं तो बड़ी कंफ्यूज हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आती क्या सही है क्या गलत है। कैसे नहीं तुम्हें समझ आती? तुम क्या ये कहना चाहते हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया? ये कहना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात छोड़ दी बताने से, जबकि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर सकती थी और जहन्नुम से दूर कर सकती थी, मगर मैंने उसका हुक्म दे दिया तुम्हें, और एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर सकती थी और जहन्नुम से करीब कर सकती थी, मगर मैंने उससे मना कर दिया तुम्हें। नहीं, मैंने तुम्हें उससे मना कर दिया जो तुम्हें जहन्नुम से करीब कर सकती थी वो भी बता दिया तुम्हें, और जो जहन्नुम से दूर कर सकती थी वो भी तुम्हें बता दिया, उनका भी हुक्म दे दिया तुम्हें, एक चीज भी नहीं ऐसी छोड़ी। इसका मतलब है अगर कोई ऐसा काम करता है जो नबी की सुन्नत में नहीं है, जो दीन में नहीं था, मगर वो सोचता है ये नेकी का काम है, सो व्हाट, कोई बुरा काम तो नहीं है ना, लेकिन आप ससुरम ने नहीं बताया, वो दीन में नहीं है। तो चाहे वो कितना ही अच्छा काम है, इमाम मालिक फरमाते हैं वो ऐसे ही है जैसे कि वो कह दे गया या जैसे कि वो गुमान करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खयानत की है रिसालत। अस्तग़फिरुल्लाह, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं निभाई? यानी आपको ये बताना वो भूल गए, उन्होंने तो फिर अपना काम ही पूरा नहीं किया, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जॉब है। लितुबय्यिना लिन्नासि मा नज़ला इलैहिम, कि वो लोगों के ऊपर वाजे कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत कर दी, फिर भी आज कितने लोग हैं जो महरूम हैं इस वजाहत से जो उन्होंने कर दी। हमारे 90% लोग इस वजाहत को जानने से महरूम है। उन्होंने अपनी जॉब पूरी कर दी, उन्होंने वजाहत कर दी जो हमारे पास महफूज है, सेव है हमारे पास तफसीरों में। लेकिन और किसके लिए की थी? लिन्नास, लिए लोगों के। क्या हम उन लोगों में शामिल हैं जिनके लिए उन्होंने वजाहत की और वो आज उस वजाहत को पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हैं? या हम उन लोगों में से हैं जिनको कोई परवाह नहीं, वो दे डोंट केयर, उन्होंने वजाहत कर दी होगी, हमें क्या, हमारे पास कौन सा टाइम है ये सारी वजाहतें सुनने का और समझने का? अल्लाह हू अकबर। तो देखना चाहिए कि हम कौन से वाले नास में से हैं। और यहां से हमें ये भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को जानना कितना जरूरी है दीन पे अमल करने के लिए। पता चल रहा है ना यहां से, जरूरत है या नहीं फिर हदीस की? अगर है जरूरत, अगर आप हाँ कह रहे हैं, तो कितनी हदीस पढ़ी है आपने? अगर अभी तक नहीं पढ़ी कोई भी किताब हदीस की, तो दिल में इरादा कर लें कि मैंने हदीस पढ़नी है। दुआएं करें कि अल्लाह मुझे मौका देना कि मैं हदीस को समझूं, सीखूं उसको, मुझे मरने से पहले ये मौका जरूर अता कर देना, क्योंकि वो वजाहत है इस कुरान की। तो वाला अल्लाहुम यतफक्करून, और इसलिए ताकि वो तफक्कुर करें इसमें, किसमें, इस कुरान में तफक्कुर करें, इसमें गौर व फिक्र करें। बहुत से लोग कहते हैं हमें गौर व फिक्र करना नहीं आता। करना उस वक्त आएगा जब पीछे इल्म होगा, जब इल्म आता है ना तो फिर गौर व फिक्र करना आता है। इल्म ही नहीं हो तो गौर फिक्र किस पे करना? तो ये अल्लाह ताला ने जिक्र रिमाइंडर भेजा, और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जिक्र उस चीज को कहते हैं जो याद दहानी होती है। आपको पता था कोई चीज लेकिन आपको भूल गई भी थी, वो सबक जो अल्लाह ताला ने आपको पढ़ा के भेजा था वो भूल गया, दुनिया में आए गफलतों में पड़ गए। ये कुरान जिक्र है, रिमाइंड कराता है, और रिमाइंडर कितनी दफा चाहिए होता है? हाँ वैसे तो हर एक से पूछ लें, जिससे बात करें वो कहते हैं हम भूल जाते हैं, हमें तो याद ही नहीं रहता क्या करें। तो जो ज्यादा भूलने वाला उसको ज्यादा रिमाइंडर चाहिए होता है या कम? हम सब भूल जाने वाले हैं ना, तो हमें कितनी दफा रिमाइंडर चाहिए? बहुत ज्यादा रिमाइंडर चाहिए। इसके बावजूद हमारा हाल ये होता है, हम एक दफा पढ़ लेते हैं तो उसके बाद सोचते हैं अब मुझे रिमाइंडर की क्या जरूरत है, अब सारी जिंदगी के लिए वो जो एक दफा पढ़ा था वो ही काफी है, रिमाइंड हो गया मेरे लिए। अल्लाह हू अकबर। फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों को वार्न किया है जो लोग मुखालफत करते हैं रसूल की, रसूल के खिलाफ चालें चलते हैं। अफ अमिन अल्लदीन मकरु सय्यिआत, क्या बेखौफ हो गए वो लोग जिन्होंने चालें चली? कैसी चालें? बुरी चालें। मकर वैसे किसी भी चाल को, तदबीर को कहते हैं, वो बुरी भी हो सकती है अच्छी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मकर वो है जो सय्यिआत वाला है, बुरा मकर। और ये क्या मकर था? यानी रसूल की मुखालफत, रसूल के खिलाफ तदबीरें, और ये लोग तदबीरें कर रहे थे इनको कत्ल कर दें या इनको जिला वतन कर दें या इनको कैद कर दें, ऐसी ऐसी चालें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चल रहे थे। तो उनके लिए क्या कहा गया कि इनको डर नहीं लगता, ये बेखौफ हो गए किस चीज से? अन यखसिफ अल्लाहु बिहिमुल अर्द, कि अल्लाह ताला इनको धंसा दे जमीन में, इससे इनको डर नहीं लगता? कि जमीन फट जाए और ये अंदर चले जाए, और यातियों मुलादा वो मिन हैसु ला यशऊरून, या इनके ऊपर अजाब आ जाए वहां से जहां से इन्होंने कभी सोचा भी ना हो, ऐसा कहीं अजाब आ जाए जैसे कौमे लूत के ऊपर आया था, अचानक ही आ गया, उनको तो पता भी नहीं था। इसी तरह आद वगैरह, उन्होंने सोचा ये बादल आ रहे हैं हमारे ऊपर, बारिश बारिश बरसाएंगे, और देखो क्या उसके अंदर से अजाब आ गया। और या खुदा हम फी तकल्लुबिहिम, या उनके पकड़ ले उनको उनके चलते फिरते उलट पुलट करते, यानी जमीन में चल फिर रहे हैं अपने बिजनेस अपने काम अपनी जॉबों पे जा रहे हैं, और एकदम कोई अजाब आ जाए। या ये भी मतलब है तकल्लुब का कि यानी अपनी कोई ऐसे काम कर रहे हैं कि जैसे ये भी तकल्लुब ही है ना, कि इंसान ऐसे काम कर रहा है, कभी किसी चीज को ऊपर करता है, किसी को नीचे करता है, किसी को प्रायोरिटी देता है, किसी को नहीं प्रायोरिटी देता, कैलकुलेशंस कर रहा है, अपनी दिन के मंसूबे बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है, ये भी एक तकल्लुब है ना, एक काम कर रहा है दूसरा काम कर रहा है, इस तरह कर रहा है, और भाग दौड़ भी तकल्लुब है, तो एक फिजिकल भी है एक मानवी भी है। तो इनको पता नहीं चलता कि ये अपने कामों में लगे हों, ये अपने बैठे में अपने भाग दौड़ कर रहे हैं, अपने बिजनेसेस देख रहे हैं, या अपने कैलकुलेशंस कर रहे हैं, अपनी कोई चीज आगे करते हैं कोई पीछे करते हैं कोई कुछ करते हैं, उसके अंदर इनके ऊपर कोई अजाब आ जाए। और या फिर तकल्लुब ये भी होता है कि रात को भी इंसान तकल्लुब करता है ना, बिस्तर पे जब लेटता है तो करवटें लेता है कभी इधर कभी इधर, तो जिस वक्त ये रातों को बिस्तरों पे लेटे हैं इनको डर नहीं लगता कि अल्लाह ताला का अजाब आ जाए इनके ऊपर। और पहले भी हम पढ़ चुके हैं अल्लाह ताला ने फरमाया अफ अमीना आलुल कुरान याती हम बासुना बया तुम वह हम नाइमून, क्या इनको डर नहीं लगता बस्ती वालों के कि इनके पास हमारा अजाब आ जाए जब ये रात को सो रहे हैं, रात को सोए हुए हैं उस वक्त अजाब आ जाए। अब अमीना अहलुल कुरान याती हम बासुना दोहम वह हम यलाबून, क्या इनको डर नहीं लगता कि हमारा अजाब इनके ऊपर आ जाए जब ये सुबह में घूम फिर रहे हैं और खेल कूद में लगे हुए हैं, उस वक्त अपनी एक्टिविटीज में लगे हुए, उस वक्त आ जाए अल्लाह का अजाब, ये बेखौफ हो गए। फमा हम बिमुअजिज़ीन, तो नहीं वो आजिज कर देने वाले हमें, यानी अल्लाह ताला को तुम आजिज नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते, वो कादिर है इस बात पे। असल में इंसान सोचता है ना जब बुरे काम करता है अल्लाह अकबर, तो इंसान सोचता है कि नहीं अजाब कहाँ आना है, आज से पहले भी तो मैं करती रही हूँ, कौन सा अजाब आ गया, और वो भी तो कर रहा है, कौन सा कोई जमीन फट गई आसमान नीचे आ गया, कुछ नहीं होता। ये जो तीन अजाब है ये उस वक्त के कि इंसान को पता भी ना हो, और चौथा भी एक बात है औ याखुदहुम अला तखव्वुफिन, या वो पकड़ ले उनको इस हालत में कि वो खौफ में हो, यानी खौफ में हो यानी मतलब ये कि उनको खदशा हो, उनको अंदेशा हो कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, खौफ के आलम में है। अब उस वक्त उनको अल्लाह ताला पकड़ ले, या वो कुछ तदबीर कर रहे हैं किसी चीज से बचने की और उस वक्त उनको अल्लाह ताला पकड़ ले, तो क्या इनको डर नहीं लगता इस बात से? यानी एक तीन सूरतें ऐसी हैं जबकि उनको पता ही नहीं था, वो चल फिर रहे हैं घूम फिर रहे हैं या वो अपने काम कर रहे हैं और एकदम अचानक अजाब आ गया, या फिर वो उनको अंदेशा है, जैसे अंदेशा होता है कोई सुनामी का या कोई हरिकेन का या कोई इस तरह की चीज का, और वो आ जाता है फिर, या फिर ऐसा भी होता है कि जिसका पता ही ना हो जैसे जलजले हैं। और बाज जगह पे ये है कि इसका मतलब ये है, यहाँ पे इसका मतलब है कि तनकीस करना यानी कमी कर देना, कि अल्लाह ताला इनको कम कर दे, थोड़ा थोड़ा करके उनको अजाब दे, क्योंकि कबीला हुजैल की लुगत में खौफ का माना कमी करने का होता है, तो यानी अल्लाह ताला ऐसी कमी कर दे कि तदरीज के साथ आहिस्ता 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 इनको पकड़ ले, आहिस्ता आहिस्ता इनको, इंसान को ना बास दफा पता भी नहीं चलता, वो किसी चीज को बड़ा अच्छा समझ रहा होता है, जैसे उसके पास माल आया और इंसान इतना खुश है कि मुझे इतना माल मिल गया, वो हदों को पार कर रहा है, उसको समझ नहीं है कि ये माल मेरे लिए अल्लाह ताला ने मुझे फितने में, माजमाइश में डाल दिया, और फिर उस माल से खुद भी बिगड़ता, औलादें भी बिगड़ जाती हैं, फिर वो माल उड़ाता है कहीं नाचने गाने वालियों को पीछे, कहीं शादी ब्याहों के नाम पे, कहीं पार्टीज के नाम पे, क्या कुछ नहीं किया जाता। वो समझ ही नहीं उसको आती कि इस माल को मैं लगाऊं कहाँ, फेंकता फिरता है उसको, जाया करता है उसको, शैतानी कामों में लगाता है। कभी सेहत इंसान के लिए फितना बन जाती है, कभी वक्त फितना बन जाता है कि जो उसको वक्त मिला हुआ है, मोहलत मिली हुई है, वो फितना बन जाता है, आजमाइश होता है उसके लिए, लेकिन उसको पता ही नहीं चलता। तो अल्लाह ताला की तदबीर से कभी बेखौफ ना हो। अल्लाह ताला जिसको चाहे कहीं धंसा दे। आपको पता है कई दफा ऐसी न्यूज आई है कि पॉट होल्स में कोई लोग चले गए, कोई बंदे का एक दफा न्यूज आई थी यहीं की, किसी और स्टेट में था, तो वो लड़का अपने बिस्तर पे ही पड़ा हुआ था, और किस तरह से वो जमीन नीचे से खुली है और वो सारा का सारा अंदर चला गया। इसी तरह आप देखें जलजले, ये कश्मीर में जो जलजला आया था आपने भी देखा होगा, पूरी कभी तस्वीरें उसकी देखी हो तो खुल गई जमीन और उसके अंदर पूरी की पूरी सड़क अंदर चली गई। आज भी ऐसा होता है, इंसान कैसे बेखौफ हो सकती, और उनको एक दिन पहले तक नहीं पता था, चंद घंटे पहले तक नहीं पता था कि यहाँ पे ये हाल हो जाएगा। छतें इतनी इतनी छतें, 2-3 मंजिला मकानों की ऐसी कि टॉप की छत जो थी ना वो जमीन के ऊपर लगी हुई थी, जो टॉप की 3री मंजिल की छत, और उसके नीचे दूसरी छत थी, उसके नीचे पहली छत, ऐसे एक के ऊपर एक छत, और लोग नीचे दब गए थे। तो इंसान सोचता है कि ऐसा नहीं होगा। हदीस में भी आता है आखिरी जमाने में आप सरसर ने फरमाया आखिरी जमाने खसफ होगा, ये जो खसफ है ना, खसफ होगा यानी जमीन में धंस जाना, और कजफ और मसफ। तो साहबा ने पूछा कि या रसूल ये कब होगा, आप सरसर ने फरमाया सुनिए अब ये बात, हम सोचते हैं ना कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, सब चीजें करो, कभी हम ये नहीं सोचते कि हाय पता नहीं अल्लाह कहीं ऐसा ना हो जमीन फट जाए और मैं इसके अंदर चली जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा अजाब आ जाए कि मैं रात को सोई हूं तो अजाब आ जाए, कहीं ऐसा ना हो हम अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं इसमें कोई ऐसी पकड़ आ जाए अल्लाह की, ये नहीं सोचते कभी। तो आप ने फरमाया ये खसफ कजफ और मसख होगा, और ये पूछा कब होगा, फरमाया जब गाने बजाने के आलात और गाने बजाने वाली औरतें जाहिर होंगी, यानी ये सिंगर्स और ये जो सारे आपके बैंड बाजे बांसुरियां गिटार ये पियानो ये सारे गाने बजाने के आलात है ना। तबरानी की ये हदीस है, आपको जरूर पूछेगा कि ये कहाँ से हदीस आपने बता दी भाई, ये तो आप मतलब समझती हैं कि गाने बजाना सही नहीं है, ऐसा तो नहीं है, फलां आलिम कहते हैं कि ये तो सही है, तो फलां आलिम कहते हैं तो सबसे बड़े जो आलिम थे आप सरसर हमने तो ये फरमाया, अब आपके आलिम जिनसे आप जाके पता नहीं किनसे इल्म लेते हैं या किनसे फतवे पूछते हैं वो कहते हैं कि ठीक है तो आपको ठीक लगता है, तो ये क्या है फिर। खसफ कजफ और मसख अच्छी बात है, मसख हो जाना चेहरों का, ये अच्छी बात है, ये सजाएं है ना, तो कब होंगी जब ऐसे गुनाह हो जाएंगे, ये हराम काम किए जाने लगेंगे और शराब को हलाल समझ लिया जाएगा कि शराब है ना, उन्होंने जो उस जमाने की वो शराब थी अब तो ये वो शराब है ही नहीं, अब तो ये कुछ और उसके नाम रख दिया। इब्ने माजा की भी हदीस है कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के लोग शराब पियेंगे लेकिन उसका नाम कुछ और रख देंगे, और वो उनकी सरपरस्ती में बाजे बजेंगे, गाने वालियां गाएंगी, अल्लाह ताला उनको जमीन में धंसा देगा और बाज को बंदर और खिंजीर बना देगा। अल्लाह अकबर। अब इंसान कहता नहीं तो अभी तक तो बना नहीं कोई भी बंदर खंजीर, पता है क्यों नहीं बना, इसलिए इन्ना रब्बकुम लराऊफुर रहीम, कि बेशक तेरा रब बड़ा ही शफकत करने वाला और मेहरबान है, ये उसका हिल्म है, ये उसका सबर है कि वो लोगों को देखता है और उनको उसी वक्त नहीं पकड़ता, मगर लोग नाफरमानियों से बचें, वो बेखौफ हो कि ये काम ना करें। अब इतनी वाजे अहादीस है फिर भी अगर किसी ने डिनाई करना है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये सही अहादीस है, ये सही की कैटेगरी में आती है, ये कोई आपको जईफ हदीस नहीं सुना रही, क्योंकि तो बहस करने वाले करते रहेंगे, बहस जाहिर है जब हमने कोई चीज नहीं छोड़नी या हम उसके आदी हो जाते हैं, या फिर वो हमें बड़ी पसंद होती है तो अब छोड़ें कैसे फिर। अब हमारे पास कोई उसका और तो बहाना होता नहीं, बस यही कहते रहते हैं कि नहीं जी ये तो हदीस ही सही नहीं है, नहीं ये तो ऐसे है, ये ऐसे फर्ज तो नहीं है छोड़ना, तो जो मर्जी तावीलें करते रहे आप, हमारा काम तो होता है बता दे। तो ये बताया गया कि लोग बेखौफ हो गए, इनको डर नहीं लगता। और तदबीर से बेखौफ होने का मतलब क्या है, कि इंसान नाफरमानी के काम करे और अल्लाह पे रहमत की उम्मीद बांधे रखे, और नहीं जो कुछ नहीं होता अल्लाह गफूर रहीम, यानी अब परवाह ही ना हो इंसान को, इंसान को ये फिक्र ही ना हो कि अल्लाह ताला मुझे पकड़ सकता है मेरे बुरे अमल पे। क्या पहले कौमों को नहीं पकड़ा गया? देखो सबसे ज्यादा जो दुनिया के बेस्ट इंसान थे ना, उनका हाल क्या था, तेज आंधी भी आती थी तो वो परेशान हो जाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा जर्द हो जाता था। तो हमारे हाल क्या है सोचे, हमारे हाल क्या है, वो बड़ी से बड़ी चीज हो जाए हमें फिक्र ही नहीं। बादल आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर जाते थे कहीं अल्लाह का अज़ाब ना। यार ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, हम फिर कैसे बेखौफ हो सकते हैं? हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं ऐसे अजाब आते हुए, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बलाएं आते हुए, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं जलजले आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, हमें कुछ फिक्र नहीं। कहीं जंगें लगी हुई हैं, कहीं कुछ हो रहा है, हम अल्लाह की पकड़ से बेखौफ है। सब ने ये सोच लिया कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा, और शैतान ये कहता कुछ भी नहीं होता। किसी गुनाह को करते हुए भी कभी हमारे दिल में ये आया कि हाय इस गुनाह पे मेरी पकड़ ना हो जाए, हाय कहीं यही तो नहीं वो गुनाह जो मेरे मीजान में ये एक डाला जाएगा। वो मीजान बराबर है, समझ लें, इमेजिन करें कि वो मीजान बराबर है, नेकियां और बदियां बराबर है, कहीं ये वाला वो गुनाह तो नहीं है जो मेरे गुनाह के पलड़े में डाल दिया गया तो मेरे गुनाहों का मीजान भारी हो जाए। अल्लाह कहीं ये वो गुनाह ना हो जाए कि जो मेरे मीजान को भारी करने का सबब बन जाए, मेरे गुनाहों के पलड़े में जाते इसकी वजह से मैं जहन्नुम में चली जाऊं। इब्ने आशूर लिखते हैं अपनी तफसीर में कि मुसलसल नाफरमानियां करना और अल्लाह से बख्शीश की उम्मीद रखना, ये होता है बेखौफ हो जाना। इंसान नाफरमानियां करता रह रहा है और उसको नहीं कोई फिक्र, उसको कोई परवाह नहीं, वो बेखौफ हो जाना ना, अल्लाह की तदबीरों से बेखौफ हो जाने को उलमा कहते हैं ये भी बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, कि इंसान के अंदर कोई डर ही नहीं। जो गुनाह करे वो भी डरे और जो सीधा चल रहा है ना वो भी डरे, क्यों उसको क्यों डरने की जरूरत? इसलिए डरे हैं कि ये जो मुझे सीधे रास्ते की तौफीक दी है ये मेरे रब ने दी है, अल्लाह इस तौफीक को छीन ना लेना कभी। तो अल्लाह ताला ने एहसास दिलाया है कि तुम्हारे पकड़े जाने को, ये ना कभी भी समझना कि ये अल्लाह के लिए नामुमकिन है, और अल्लाह ने अगर अभी तक छोड़ा हुआ तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, फिक्र नहीं की कोई बात ही नहीं। पढ़ते नहीं है सूरह मुल्क का, तो उसके अंदर क्या है कि कोई आसमान वाला तुम्हें जमीन में धसा दे, तुम इससे बेखौफ हो? अल्लाह ने कारून को भी तो धसाया था, आज देखे कौमे लूत धसी पड़ी है उसमें पानी के नीचे अब, तो ऐसे अजाब आए हैं, हमने क्या सोच रखा है? तो ये बेखौफी वाली जिंदगी इंसान को, ये जो निडर होके जो जिंदगी होती है ना, ये इंसान को अल्लाह की तरफ मायल नहीं होने देती। याद रखें ये बात, ये जो बेखौफी वाली जिंदगी है ना, कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता, बड़े बड़े काम गुनाह कर रहे हैं तब भी कुछ नहीं होता, तो हमने कौन से इतने बड़े किए? आगे ही आएगा शैतान कैसे मुजयन करता है, कैसे उसको दिखाता है कि तो कोई बड़ा गुनाह ही नहीं, लो तुम क्या ऐसे गुनाह करते हो, देखो सारे ही आजकल कर रहे हैं, तो क्या हो गया अगर तुमने भी कर लिया? लो भला अल्लाह ताला ने इतनी सी बात पे पकड़ लेना, जहां पे मैंने आपको बताया था एक जर्रे के बराबर भी, तो ये मैं तो नहीं कह रही, सूरह जिलजाल में आप पढ़ लें, एक जर्रे के बराबर भी बुराई है ना, खैर भी है तो यारा वो देख लेगा, शर भी है तो यारा वो देख लेगा, शर का भी एक जर्रा होगा ना वो भी तुलेगा, खैर का भी जर्रा तुलेगा मीजान में। तो कभी ये सोच आई कि यही शर का जर्रा ना हो जो मुझे डबो दे। कैसे बेखौफ हो सकता है इंसान? तो याद रखें, जो बेखौफ रहता है ना, वो अल्लाह की तरफ मायल नहीं होता, वो ही फिर सरकशी करता है, फिर उसको परवाह नहीं होती गुनाह करने। बेखौफी जो है, तो खौफे खुदा बहुत बड़ी चीज है, बड़ी पावर है इसके अंदर। इससे इंसान गुनाहों से बचता है, और जहां बेखौफियां आती हैं वहां पे मादर पिदर आजाद, फिर इंसान जो मर्जी करे। जब खौफे खुदा ही नहीं है, फिर जो मर्जी करे, फिर आप देख लें कि जो हो रहा है दुनिया के अंदर, फिर जुबान भी ऐसे चलाई जाती है, फिर हाथ भी चलाए जाते हैं, फिर इंसान वो गुनाह कर बैठता है कि जो शैतान भी सुन ले तो शर्मा जाए। आप सोचें, अगर खौफे खुदा है इंसान, अगर मिसाल के तौर पर, एक मिसाल से आप समझें कि अगर मुझे आज ये बात हो कि मैं, पता नहीं आज की रात मैंने बिस्तर पे सोना है या कब्र में मैंने सोना है। हालांकि हम अपने सामने देखते हैं, कई लोग सुबह करते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि आज रात उनकी कब्र में होगी। कई लोग हैं, हमारे सामने मिसालें हैं, हमारे सामने ये मिसालें हैं, उनको नहीं पता। तो अपने तैयार हो रहे हैं, जा रहे हैं जॉब के लिए, जा रहे हैं इसके लिए, जा रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये थोड़ी देर में हमें मौत आ जानी है, आज रात हमने कब्र में होना है। अच्छा, अब ये अगर इस ये सोच है, और दूसरी तरफ ये सोच है कि जैसे मैं रोजाना उठती हूँ, जैसे मैं रोजाना जॉब पे जाती हूँ, इसी तरह आज भी होगा, उसी तरह मैं वापस आऊंगी, उसी तरह ये जिंदगी चलती रहेगी, तो दोनों में फर्क है कि नहीं है? एक वो सोच के पता नहीं आज मेरी रात कब्र में हो, और एक ये सोच के जैसे रोज गुजरता है वैसे ही आज भी गुजरेगा, फर्क है ना? एक सोच इंसान को अमल की तरफ लेकर जाएगी, और एक सोच इंसान को बेपरवाही की तरफ ले जाती है, बेखौफी की तरफ, बेखौफ। लेकिन लोग आज डरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो मस्त रहना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। और किसी को ऐसी बात बता दी जाए ना कि हाय तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर जमीन फट जाए, तुम अंदर चले जाओ, तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह के अजाबों से, तुम्हें डर नहीं लगता इन चीजों से, तो कहेंगे आप क्यों हमें डरा रहे हैं, इस चीज को बुरा समझते हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम बेखौफ हो गए? उनको तो कहा जा रहा है जो मकर करते हैं रसूलों के खिलाफ, जो भी गुनाह कर रहा है, जो भी नाफरमानी करता है, क्या वो बेखौफ हो गया? ये भी नाफरमानी कर रहे थे रसूल की मुखालफत करके, और हर गुनाह करने वाला एक नाफरमानी करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, अब अलम यरो, क्या भला वो देखते नहीं है, इला मा खलक अल्लाहु मिन शेई, तरफ उसके जो पैदा किया अल्लाह ताला ने, किसी भी चीज को, जिस चीज को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया, क्या वो ये नहीं देखते क्या कि वो चीज यतफय्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीनी व शमाइली सुज्जदन लिल्लाह, कि वो गिरते हैं, उसके साए दाएं और बाएं, उसके साए गिर रहे हैं, किस लिए गिर रहे हैं? अल्लाह ताला को सजदा करने के लिए। वह हम दाखिरून, और वो आजी करने वाले, तुम देखते नहीं हो, हर चीज का साया अल्लाह को सजदा कर रहा है। देखिए ना, अब एक चीज है, उसका साया पहले जब सूरज चढ़ता है तो एक तरफ होता है, और फिर दूसरी तरफ ऐसे करके झुक जाता है। आपको ऐसे नहीं लगता जैसे ये चीज सजदा कर रही है? कभी साया देखा है आपने? साये तो देखते हैं, लेकिन इसको मूवमेंट इसकी देखिए, सुबह के वक्त कैसा होता है, एक तरफ होता है, ठीक है, फिर जब सूरज बिल्कुल ऊपर आ जाता है तो फिर साया खत्म हो जाता है, और फिर उसके बाद सूरज नीचे को जाता है तो साया दूसरी तरफ जाना शुरू करता है। ऐसा नहीं आपको लगता जैसे कोई इंसान सजदे में जा रहा है? बिल्कुल वो तस्वीर सोचें और साये को सोचें, ये साया अल्लाह ताला ने फरमाया ये सजदा कर रहा है। इस तरह हर चीज अल्लाह को सजदा करती है। जब सूरज को जवाल आता है, वो चीजें सजदे में जा रही हैं, वो उठी जैसे कोई चीज उठी और सजदे में चली गई। सुभान अल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल, कि इससे एक मिसाल के एक एक चीज का सजदे को किस तरह से अल्लाह ताला ने बताया है, और कितनी ब्यूटी है सजदे के अंदर। और मैं भी कहीं से, आप कोई कैमरा लगा ले और उसके बाद उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, तो जो 12 घंटे में जिस तरह साया उसका जाएगा और नीचे झुकेगा, तो आपको फिर वो खूबसूरत सी पिक्चर सामने आएगी कि कैसे साया सजदा करता है। सुभान अल्लाह, तो सायों से बता के इंसान को क्या बताया गया? वो दाखिरून है, वो क्या करते हैं, आजी करने वाले हैं, बताया कि हर चीज देखो झुकी भी है। सूरह रात में भी हम पढ़ चुके हैं ना कि अल्लाह ताला के लिए सजदा करती है हर चीज, तवा नौकर, खुशी से या मजबूरी से, हर चीज का साया है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो कोई भी चीज है। चौपाए तो वैसे ही झुकते ही हैं, उनका तो आपको पता है कि वो जब खाना खा रहे थे तो नीचे सर झुकाया होता है। तो खालिक का ये हक है कि मखलूक उसके आगे झुके, जिसने पैदा किया ना उसका हक बनता है कि मखलूक उसकी जो बनाई हुई चीज है उसके आगे झुके। कहीं हैं जो जमीन पे ही रेंग रहे हैं उनका वो सजदा है, कहीं हैं जो खड़े हुए हैं तो वो भी सजदा कर रहे हैं सायों की सूरत, कहीं चौपाए हैं तो वो झुक के सजदे कर रहे हैं। और इंसान की जो नमाज है ना, वो इन सब के जो नमाज है या इन सब के जो सजदे हैं उनकी एक तस्वीर है। खड़ा हुआ है तो ऐसे जैसे दरख्त खड़े में कयाम में, फिर रुकू में जाता है तो ऐसे जैसे जानवर चौपाए झुक के चारा खाते हैं, फिर सजदे में चला जाता है तो ऐसे जैसे रींगने वाले सजदा कर रहे हैं। वो जो हिलजुल नहीं कर सकते, अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, देखो कैसे वो अपनी आजी दिखा रहे हैं अपने सायों के जरिए। सुभान अल्लाह, इससे इंसान को बताया गया कि यह इंसान फिर तुझे कैसा होना चाहिए, तुझे अल्लाह ताला के सामने किस तरह झुकना चाहिए, तुझे आजी कितनी दिखानी चाहिए। ये वो चीजें हैं जिनको इंसान रोजाना देखता है लेकिन कभी इनकी तरफ तवज्जो नहीं करता। जैसे सूरह यूसुफ में था ना, कितनी निशानियां हैं आसमान और जमीन में जिनकी तरफ ये रोज गुजरते हैं मगर तवज्जो नहीं करते। तो वो सायों से समझाया गया, और जरूर इनको कभी नोटिस करिएगा और इसे सीखिएगा। इंसान का भी एक साया है, चाहे वो डिलिबरेटली अपनी खुशी से अल्लाह के सामने नहीं भी सजदा करता लेकिन जमीन व आसमान की हर चीज, मा खलक अल्लाहु मिन शई, जो भी पैदा किया अल्लाह ताला ने हर चीज सजदा कर रही है। तो जो काफिर हैं आप सोचेंगे वो कैसे सजदा कर रहे हैं, फिर उनके भी साए तो सजदा करते हैं, वो चाहे खुशी से झुके ना झुके, वो जो अल्लाह को नहीं मानता उसका भी साया सजदा अल्लाह ही को करता है। इवन सूरज भी जाके जब हदीस में आता है कि गुरूब होता है तो अल्लाह ताला के अर्श के आगे सजदा करता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। वलिल्लाही यस्जुदु मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ही के लिए सजदा कर रहे हैं जो कुछ आसमानों में और जो जमीन में, मिन दाबतिन, कोई जानदार भी। अब जानदारों में कौन कौन आ गया, कोई जानदार भी, यानी उसमें इंसान भी है, चिरिंद परिंद भी है, मछलियां भी हैं, ये चौपाए जानवर भी हैं, जितने भी जानदार हैं जिसमें भी कोई जान है, दबीब कहते हैं हर वो चीज जो हरकत करे, सब झुके हुए। और उनका झुकाव उनकी मुसलसल इताहत भी है कि वो मुसलसल इताहत में लगे हैं। एक सजदा है ना फिजिकल, और एक इताहत का भी सजदा होता है, यानी इंसान जब इताहत करता है तो वो भी क्या है, वो इस चीज की डेमोन्स्ट्रेशन है कि मैं अल्लाह के सामने झुकाऊं। हसन बसरी फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम तेरा साया तो अल्लाह को सजदा करता है और तू अल्लाह को सजदा नहीं करता। अल्लाह अकबर। तो वल मलाइका, तो और फरिश्ते, वहम ला यस्तकबिरून, और वो तो तकबर नहीं करते। इंसान तकबर करता है ना, मैं क्यों किसी के आगे झुकूं, मैं क्यों किसी को सजदा करूं, उसके अंदर मैं बहुत होती है, लेकिन फरिश्ते जैसी मखलूक वो भी अल्लाह ताला को सजदे करते हैं। और आप देखें फरिश्ते कोई छोटी मखलूक नहीं है, इतनी पावरफुल और इतनी बड़ी मखलूक है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था तो उनके 600 पर थे और सारा आसमान ढका हुआ था उनके परों से। और आप सोचें कि वो कितनी बड़ी चीज होंगे जिब्राईल अलैहिस्सलाम के, उनके परों से सारा आसमान ढका हुआ हो, और उनकी भी हालत ऐसी कि जब अल्लाह ताला का कोई हुक्म आ जाता है तो फिर वो ऐसे हो जाते हैं जैसे कि जैसे कि पुरानी मश्क होती है, लेदर बैग होता है ना, अल्लाह के डर की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मैंने मेराज पे जिब्राइल अलैहि सलाम को देखा था, और अल्लाह के डर की वजह से ये लेदर बैग ऐसे ही नहीं मुचड़ा सा हो जाता, पुराना सा हो जाए तो उस तरह हो जाते हैं। अल्लाह हू अकबर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के पास फरिश्ते हैं जिनके कंधे अल्लाह के डर से कांपते रहते हैं। अच्छा, वो डरे जिनके ऊपर, जिनके लिए ना जहन्नुम है और ना ही उनके लिए कोई ऐसा, कोई उनके लिए मसला है, कोई उनके हिसाब किताब थोड़ी है। उनके बारे में आया, यखाफूना रब्बहुम मिन फौकहिम, वो डरते हैं अपने रब से जो उनके ऊपर है। वही यफालूना मा युमरून, और वो वही करते हैं जो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया। अल्लाह के हुक्म से इधर उधर नहीं कहीं जाते, एज ऑर्डर्ड वैसे बिल्कुल। उनकी इतनी फरमा बरदारी है, तो वो जैसे हुक्म दिया जाए वैसे वो बजा लाते, और फिर भी डरते रहते हैं। अच्छा, हम तो दो अल्लाह के हुक्म मान लेना तो हमें बेखौफी हो जाती है। अब तो मैं बड़ी नेक बन गई, अब मुझे क्या, अब तो मुझे डर ही नहीं रहा, अब मैं किस बात की तौबा करूं। अब खौफ भी खत्म हो जाता है, क्योंकि हम थोड़ी सी बस नमाज रोजा जो शुरू कर दिया हमने, कुरान थोड़ा पढ़ना शुरू कर दी, तो अब हमें ऐसे लगता है कि हम तो बड़े नेक हैं, अब मुझे डरने की क्या जरूरत है। वो डर हैं जिनको को गुनाह करते हैं, मैंने क्या किया। फरिश्ते सोचे हैं अल्लाह ताला से डरते हैं। जब अल्लाह ताला का कोई हुक्म आता है तो सजदे में चले जाते हैं, और जब वो हुक्म ओवर होता है तो उसके बाद सार उठाते हैं, फिर एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या हुक्म आया, क्या हुक्म आया। इतना उनको डर होता है। और अर्श के उठाने वाले फरिश्ते जो हैं, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, और जब जब वो सार ऊपर उठाते हैं तो कहते हैं, अल्लाह तू पाक है, जैसे तुझसे डरने का हक है ऐसे हम डर नहीं, ऐसे हमसे डरा नहीं जाता जैसे तुझसे डरने का हक है। जो जितना अल्लाह ताला को जानता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को जानता हूँ और सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला। यानी मीन्स के जिनके तक बेखौफी है ना, वो असल में अल्लाह ताला को जानते नहीं है, इसलिए बेखौफ है। जितना आप अल्लाह ताला को जानेंगे उतना ही ज्यादा आपको पता चलेगा वो कितना पावरफुल है, वो कितना पावरफुल है, कितनी कुदरतों का मालिक है, वो मैं क्या चीज हूं। अपना आप एक हकीर जर्रा महसूस होगा, और अल्लाह ताला की शान और उसका जलाल और उसकी अजमत जब सामने आती है ना, तो इंसान खुद ब खुद झुक जाता है, कोई कहता नहीं है, फिर खुद ब खुद झुक जाता है। ये झुकाव हमारे अंदर क्यों नहीं आता, इसलिए कि पता ही नहीं। जितना एक बच्चे को पता है ना अल्लाह ताला के बारे में, उतना ही हमें भी पता है। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि हमें ये पता है अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना याद करनी है, वो समी है, वो बसीर है, वो खबीर है, वो अली है, वो गफूर है, वो वदूद है, ये पता है। अब किसी से पूछा जाए कि ये क्या, कि इसकी डेप्थ क्या है, क्या समझते हैं आप इससे अल्लाह ताला के बारे में, तो सिवाय उसके तर्जुमे के, शायद वो भी सबको ना आएगा, सिवाय उसके तर्जुमा बता देंगे, उससे आगे कुछ भी नहीं पता। तो क्या ये इन अस्माओ सिफात पर ईमान है? अस्माओ सिफात पे ईमान के बगैर तो ईमान ही नहीं। लेकिन अस्माओ सिफात को जानना ही नहीं, अल्लाह ताला के नामों को ही नहीं जानना, तो उसको पहचानेंगे क्या, पता ही नहीं। और उसके नाम ऐसे नहीं जैसे हम नाम रख लेते, किसी का नाम साजदा रख लिया चाहे वो कभी सजदा ही ना करती, किसी का नाम साइमा रख दिया चाहे वो कभी कभी रोजा ही ना रखा। वो इस तरह से नहीं है कि कोई भी नाम रख दिया जाए वो तो चाहे उसको नाम को डिपिक्ट कर ही ना रहा हो, किसी का नाम सिद्दीक रख दिया वो सच्चा है ही नहीं, तो ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला के जो नाम है वो वैसे ही है जैसे उसकी वो सिफत है, उसके नाम उसकी सिफात है, उसकी क्वालिटीज हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उनके बारे में ही नहीं जानते तो आप क्या जानते फिर उसको। कितनी दफा मैंने कहा है कि अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना जो हमारी सीरीज भी हुई थी, इसको सुने, सारे तो नहीं पूरे उसमें हुए थे, लेकिन फिर भी उनसे भी हम अल्लाह ताला को पूरी तरह नहीं पहचान सकते, कि हम इन नामों की एक्सटेंट को नहीं पहुंच सकते, कितने वसी हैं वो नाम, हम वो नहीं पहुंच सकते। मगर थोड़ा तो शऊर हो, जिस जात से मोहब्बत का दावा करते हैं, जिस जात को अपना खुदा बनाया है, वो कौन है, कुछ नहीं पता जी, कुछ नहीं पता। हाँ पूछ लो, ये कोई साइंस का फॉर्मूला पूछ लो, कोई मैथ की बात पूछ लो, कोई आज का फैशन पूछ लो, कोई घर बार की बुकिंग की बातें, कोई सजाने संवारने की बातें, कुछ खुद संवरने की बातें, कुछ मेकअप की बातें पूछ लो, वो सब हमें पता है। लेकिन ये नहीं पता, जिसको हमने इला बनाया, पता है आपको इला बनाना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यानी इला वो होता है, ओ माय गॉड, जो सबसे टॉप पे आपकी जिंदगी के अंदर, जिसके लिए आपकी जिंदगी गुजरती है, जो आपका खुदा है, खुदा बनाना यानी जिससे ऊपर कोई है ही नहीं, उसे हम खुदा कहते हैं, उसको हम इलाह कहते हैं, उसको हमें उसके बारे में ही नहीं पता। कैसी बात है, कितनी हैरत की बात है, कहते हैं उसको वो अकबर है और कोई पता ही नहीं वो कौन है। अल्लाह हू अकबर। इस तरह से फरिश्ते जो उससे डरते हैं, फरिश्ते उसका खौफ रखते हैं, फरिश्ते उसका कहना मानते हैं, तो तुम्हें क्या फिर है? तुम तो शऊर रखने वाली मखलूक हो, अकल रखने वाली मखलूक हो, तुम्हारे अंदर कितनी फरमा बरदारी, वो देखो कैसे फरमा बरदार, वो इतनी बड़ी ह्यूज मखलूकात होके फरमा बरदारी करते हैं, तुम हो क्या चीज? इतनी सी चीज, एक चीख से तो पूरी बस्ती जो है ना, वो उसके कलेजे ही फट गए, जिगर फट गए उनके, मर गए वो सारे। एक जिब्राइल अलैहिस्सलाम की चीख थी, पूरी बस्ती खत्म। सोचो सोचे इतनी सी मार है हम, एक चीख की मार, एक सूर भूंगने की मार है हम, सूर से ही सारे मर जाएंगे। क्या चीज है हम, कोई लश्कर नहीं आएंगे सबको एक एक को मारने के, बस सूर की आवाज से ही सब मर जाएंगे। सोचिए हम क्या चीज है, क्या हमारी औकात है? इतनी बड़ी बड़ी मखलूकात, सूरज जैसी मखलूक, कितना बड़ा है सूरज के, उसके सामने हमारी जमीन इतनी सी है। अब कभी वो पिक्चर्स देखे, वो सूरज बनाया होता जमीन का, उसके साथ कंपैरिजन बनाया होता है, इतना बड़ा बॉल सूरज है, इतनी सी छोटा सा बॉल जमीन है, और सूरज से बड़े जो सितारे हैं उनके सामने तो जमीन नजर ही नहीं आती, डॉट के बराबर है, नुक्ते के बराबर। उसके ऊपर हमारी हस्ती तो माशाल्लाह क्या ही चीज है हम, और फिर अकड़ हमारी क्या है, फिर हमारी बातें क्या है कि हम अल्लाह के ऊपर बातें करते हैं? हम क्या है, अल्लाह ताला के ऊपर कुछ चीज बोलते हैं और ऐसी ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं, ये बताती हैं कि हमें कोई पता ही नहीं कि वो रब क्या है। किसी ने कहा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, किसी ने कहा अल्लाह ताला को तो भूल ही गया, तेरे लिए फरिश्ते को भेजना। उनकी बहन बीमार थी काफी, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, तो उन्होंने कहा जी आप लगता है अल्लाह को भूल गया, तेरे लिए फरिश्ता भेजना। मैंने कितनी लूज टंग हमारी, हम कितने लूज माउथ हैं जो ऐसी सी बातें अल्लाह ताला के ऊपर कर देना, और बेशुमार और बातें सुन लेंगे, लगता है अल्लाह ताला ने तो ये समझ लिया, वो उसने तो ये कहा होगा, आपको क्या पता उसने क्या कहा होगा, वो तो ये कहता होगा, वो तो ये समझता होगा, उसने ऐसा क्यों किया, वो ये क्यों करता है, अब वो कहाँ है जब वहां पे जुल्म हो रहा था, उसने फलां को ऐसा क्यों बनाया, इतराजात उसके ऊपर। हम खुद तो अगर इंसान सिर्फ अपनी हस्ती को ही पहचान ले ना कि वो अल्लाह ताला के मुकाबले में क्या चीज है, तो उसकी जुबान गंग हो जाए, गूंगा हो जाए, वो बोल नहीं सकेगा। लेकिन पता चलता है कि उसने तो ना खुद को पहचाना कि मेरी हस्ती क्या, और ना रब को पहचाना, और मुंह से क्या बोलते, कोई इलाह ही नहीं सिवाय अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मुसलमानों की बात कह रही हूँ, काफिरों की नहीं अभी कह रही, उनको तो पता ही नहीं है। ये जो दावा करता है ना कि मेरा खुदा अल्लाह है और उसके सिवा कोई खुदा है ही नहीं, ये उसकी बातें हैं। तिरमिजी की हदीस है, अबू जर फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते, मैं वो कुछ देखता हूँ और वो कुछ सुनता हूँ जो तुम ना देखते हो ना सुनते हो। आसमान चिरचिराता है, चिरचिराना क्या होता है, जैसे आप कोई वजनी चीज किसी पर डाल दें, जैसे चारपाई है या कुछ, उसके ऊपर आप बैठ जाते हैं, चिरचिराने लगती है ना वजन से, तो आसमान चिरचिराता है और उसको हक है कि वो चिरचिरा है, यानी वो सही चिरचिरा रहा है। कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, कि आसमान में चार उंगली बराबर भी जगह ऐसी नहीं है जिसमें कोई फरिश्ता अपनी पेशानी सजदे में ना रखे हुए हो। अल्लाह हू अकबर, सजदे में ना रखे हुए हो कोई, इतना इस आसमान ये इतना क्राउडेड है, इतना क्राउडेड है कि इसके ऊपर हर जगह फरिश्ते सजदे में अपनी पेशानियां रखे। तुम क्या समझते हो अल्लाह ताला को, तुमने तो अल्लाह की कदर ही नहीं जानी जैसे कदर करनी चाहिए थी। फरमाया अल्लाह की कसम जो मैं जानता हूं, अगर तुम जान लो ना तो तुम हंसते बहुत कम और रोते बहुत ज्यादा। और तुम, अल्लाह ताला माफ करे, और तुम बिस्तरों पर औरतों से लज्जत अंदोज ना हो सकते, और तुम वीरानों में भाग जाते, मैदानों में भाग जाते कि अल्लाह से अपनी मग़फ़रत के लिए फरियाद करते। अब ये देखें, ये हदीस हमने भी सुनी है ना, तो अबू जर ने भी ये सुनी। अब हमारे पर क्या असर हुआ? कुछ भी। तो अबू जर रजी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं आगे से? काश मैं एक दरख्त होता कि लोग उसको काट ही देते। यानी कितना फर्क है उनके सुनने में, कि उन्होंने सोचा कि अल्लाह अकबर, अगर ऐसी बात है तो काश मैं इंसान ही ना होता, मैं तो एक दरख्त ही होता, लोग उसको काट के उसकी लकड़ियां ले जाके जला देते, बस मैं एक इंसान ही ना होता। नहीं, मैं यानी इंसान अल्लाह ताला का हक तो कभी भी नहीं दे सकता, मगर जो आपसे सलम ने फरमाया ना कि हंसते कम और रोते ज्यादा, और जो तुम्हें अगर ये पता चल जाए जो मुझे पता है, तो इतना डर गए, उनके अंदर खौफे खुदा कितना था। किधर गया मुसलमानों का खौफे खुदा? किधर गया वो खौफे खुदा जो फरिश्तों को है? ये देखें आप, ये भी बयान किया जाता है कि जब शैतान की कारिस्तानी जाहिर हो गई ना, तो जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम रोने लगे। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही फरमाई कि ये रोना किस बात की वजह से, तुम क्यों रोते? उन्होंने अर्ज किया, रब हम तेरी पकड़ से बेखौफ नहीं है, हमें डर लगता है, इतना वो डरते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, तो तब भी देखा कैसे यानी बाज़ फरिश्ते अल्लाह ताला ने जब से जहन्नुम को पैदा किया, उस डर से वो रोते हैं। हालांकि वो उन जहन्नुम के लिए नहीं पैदा किए गए, उनको तो हिसाब किताब ही नहीं है उनको, लेकिन ये डर लगता है अल्लाह हमें ना इसमें डाल दे, वो हमें जहन्नुम का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि हमने अपनी टिकटें जो पक्की कराई हैं जन्नत की, हमें क्या डर होगा ना, हमें हिसाब किताब का कोई डर है, वो फर्क नहीं पड़ता, जो हिसाब किताब होना हो जाए होता रहेगा, हमें क्या इससे, जैसे कि हमारे लिए तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं। या अल्लाह तू हमें माफ कर दे, अल्लाह ताला हमें अपना खौफ अता फरमाए और अपनी मोहब्बत अता फरमाए। खौफ खुदा बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है कि इंसान को अल्लाह ताला का खौफ हो। इसका मतलब है कि जब आपके अंदर खौफ खुदा है, इसका मतलब आपने अल्लाह ताला को पहचान लिया। जितना ज्यादा आपके अंदर खौफ खुदा होगा, उतना ही इसका मतलब आप अल्लाह ताला को पहचानते हैं। जितनी आपके अंदर बेखौफी होगी, इसका मतलब उतना ही आप अल्लाह ताला को नहीं पहचानते, जानते ही नहीं आप उसको। अल्लाह अकबर।